पावन था। सब लोग पुकारो जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम।
हरे कृष्ण।
जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवर धारी गोपाल। जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवर धारी गोपाल। सब लोग बोलो गोपाल 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 गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। जय राधे श्री राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे श्री राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे। भजले राधे जय श्री राधे। भजले राधे जय श्री राधे। कृपामयी राधे कृपामयी। करुणामयी राधे करुणामयी। हे दयामयी राधे दयामयी। भजले राधे जय श्री राधे। भजले राधे जय श्री राधे। राधे राधे जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हे गोपाल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे।
प्लीज कम महाराज।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। राधे श्याम जय राधे श्याम।
श्री मानसरोवर धाम की, श्रीमती राधा रानी की, श्री वृंदावन धाम की, हिज होलीनेस परम अद्वैती महाराज की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा।
सो महाराज दिस इज राधा गोपीनाथ कार्तिक यात्रा टू वृंदावन एंड दिस इज वन ऑफ द एट ग्रुप्स ऑफ द होल यात्रा। द होल यात्रा इज डिवाइडेड इन एट ग्रुप्स इन द नेम ऑफ एट सखीज। सो दिस इज ललिता ग्रुप। ललिता ग्रुप हैज गॉन टुडे टू भांडीरवन एंड बंसीवट एंड नाउ इट द यात्रा हैज कम टू मानसरोवर।
वेरी नाइस।
वुड यू लाइक टू फ्यू वर्ड्स महाराज?
Or Radhanath Swami's disciples?
Yes. Most of them. Most of them. You can have a seat here and speak.
I can stand.
Okay.
Radhanath Maharaj ki jai ho.
Hari bol.
Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai ho.
Jai.
Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki jai ho.
Jai.
Mansarovar ki jai Radha. So where you're sitting here is maybe one of the most confidential places of Braj.
I will translate in between.
All right.
जहाँ पर आप बैठे हुए हो ये राधा रानी और कृष्ण भगवान की लीला में सबसे रहस्यमय और गुप्त जगह है.
You see, Mansarovar means there Radharani comes here when she's upset.
मानसरोवर का अर्थ होता है कि जब राधा रानी रूठ जाती हैं तो यहाँ पर आती हैं.
When Radharani is upset, Krishna is in trouble.
जब राधा रानी रूठ जाती है तो कृष्ण परेशानी में आ जाते हैं.
Real big trouble.
बड़ी बड़ी समस्या.
And then he must find her.
और फिर यहाँ पर जब आती है तो उनको ढूंढना भी पड़ता है.
And then she sits here on this lake amongst these beautiful trees.
और फिर वो यहाँ पर इन लता पताओं की घनघोर जंगल में बैठ जाती है.
And Krishna has to beg her to forgive him for whatever little thing there may be.
और कृष्ण भगवान को उनकी याचना करनी पड़ती है, माफी मांगनी पड़ती है.
This place is also a favorite of Lalita Vishakha.
और ललिता विशाखा देवी की भी ये बहुत प्रिय जगह है.
And the manjaris.
और मंजरी जो उनकी सेवा करती है उनकी भी बहुत प्रिय स्थान है.
They make flower bed for Radha Krishna in this place.
Right. और वो पुष्प शैया का आयोजन करती है राधा कृष्ण के लिए इस जगह पर.
So they can rest here, just there where the lotus feet are.
और यहीं पर वो आराम करते हैं जहाँ पर उनके चरण कमल पड़ते हैं.
So this is beyond our mind to see that this transcendental place is still revealed in the middle of this Kali Yuga.
और इस कलयुग के अंदर ऐसी अद्भुत जगह अभी भी प्रकट है, ये एक चमत्कार है.
But you know that is because Srila Prabhupada, a great bhakta of Radha Krishna in Vrindavan, was given the special charge to bring the whole world here for purification.
क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी ने अपनी असीम कृपा से यहाँ पर पूरे विश्व को लाने का संकल्प किया था अपने गुरु महाराज की आज्ञा से, इसलिए आज भी ये स्थान हमारे लिए कलयुग में होते हुए भी प्रकट है.
Purification is the main thing of doing Brajmandal parikrama, to clean our heart.
तो ब्रजमंडल परिक्रमा का सबसे महान उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य यही है कि हृदय की शुद्धिकरण हो जाए.
There is no limit to how pure our heart can be because we want to become pure devotees, so is no end to it. So therefore the devotees they will also go on chanting and doing parikrama and studying the books and doing service. No end. Nitya Leela.
तो हृदय अपना कितना शुद्ध हो सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है. अपना हृदय अनंत शुद्ध हो सकता है, इसलिए भक्त लोग जप करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे और अनंत काल तक ये कार्य होते रहेगा.
Now when we come to these holy places, we not only want to purify our heart, but we also want to see all the purity of the Dham.
केवल हम लोग यहाँ पर अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन धाम की जो पवित्रता है उसकी भी अनुभूति करने को आते हैं.
When you go back to your buses, you will see many hundreds of bags full of garbage. They were all left here by the yatris. We were all picking up this morning all over where hundreds of bags. So this is something also for purification. When we come to the holy dam, we should not leave one single piece of plastic there.
सुबह जब महाराज जी यात्रा लेकर यहाँ पर आए थे तो कई यात्रियों ने यहाँ पर छोड़े गए कचरे का ढीक यहाँ पर उठा रहे थे वो. इसका मतलब ये हुआ कि हमें धाम का महत्व पता नहीं है. यहाँ धाम में हमारी तरफ से कोई भी गंदगी, कोई भी प्लास्टिक, कोई भी कचरा नहीं छोड़ना चाहिए.
Because we want to make for Radha Krishna flower bed and not plastic bed.
Radha Krishna ke anand ke liye hum pushpa shayya, phoolon ka bana hua sage yani bistar banana chahte hain, plastic ka nahi banana chahte.
And otherwise man, then Radha Rani will become angry with us.
To Krishna Bhagwan ke upar krodh karne ke badle mein Radha Rani hum par rut jayegi.
But when you please Radha Rani, when she is in man, when you do some seva for her, you get special mercy from her, because then she is the most needy.
तो जब राधा रानी मान कर रही है कृष्ण भगवान की लीला में और तब आप उनकी सेवा करते हैं तो ऐसे मान भरे स्थिति में उनकी सेवा करने से बड़ी विशेष कृपा हमको प्राप्त हो जाती है.
One time in Yavat, Radharani was also in Man, and she was crying and crying and crying.
एक बार यावट नाम का राधा रानी का ससुराल की स्थान है वहां पर राधा रानी मान करके रो रही थी.
बिकॉज कृष्णा डिड नॉट कम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑन टाइम देन शी लेफ्ट विद विशाखा एंड ललिता वन मैसेज आवर रिलेशनशिप इज फिनिश्ड.
अरे कृष्ण भगवान समय पर मिलने नहीं आए इसलिए राधा रानी रूठ गई और उन्होंने ललिता विशाखा के साथ में वहां से एक संदेश रखा कि हमारा रिश्ता अभी समाप्त हो चुका है.
Then Krishna came a little late. Radharani was gone. Lalita Vishaka said, "Only one message from Radha, finish everything, and then they go away."
और राधा रानी चली गई और थोड़ी देर के बाद लेट कृष्ण भगवान आए वहां पर तो ललिता देवी ने उनको कहा आपके लिए केवल एक ही संदेश है सब कुछ समाप्त हो गया है.
Then our Krishna ji is crying and crying and crying.
तो हमारे कृष्ण जी फिर रोने लगे रोने लगे रोने लगे.
Then Purnamasi is coming. She's seeing Krishna crying. She says, "Krishna, what is happening? You cannot cry like this."
तो पूर्णमासी जी जो पार्वती जी का अवतार हैं, वो वहां पर आती है और कहती है कृष्ण जी आप क्यों रो रहे हैं ऐसा आपको रोना नहीं चाहिए.
You have such a nice flute. You can play such nice music. And Krishna throw away this flute. I have no flute, nothing. I don't care.
वो कहते हैं आपके पास सुंदर इतनी मुरली है उसमें आप अच्छी अच्छी ताने बना सकते हैं बजा सकते हैं. तो कृष्ण भगवान ने मुरली को फेंक दिया कि अभी मुरली से मुझे कोई मतलब नहीं है जब राधा रानी नहीं है तो मुरली का कोई अर्थ नहीं है.
Then she said, "But you have such beautiful blue skin and braj, you should be happy."
लेकिन आपका इतना सुंदर नीलमणि जैसा शरीर है सुंदर कांति है आपकी तो आपको बहुत खुश होना चाहिए.
Then Krishna changes the color into golden. He said, no, I know blue, I am not braj, I don't like anything now.
तो कृष्ण भगवान बड़े नाराज होकर कहते कि मैं नीला वीला कुछ नहीं हूँ और वो स्वर्ण के रंग के बन जाते हैं.
Then Purnamasi said, "But you got so beautiful hair." Krishna said, "No hair, I will be shaved head."
और कृष्ण भगवान को पूर्णमासी कहते हैं आपके इतने सुंदर घुंघराले बाल है तो नहीं मुझे ये बाल नहीं चाहिए मैं भी सर मुंडवा लूंगा.
Without Radharani, I want nothing. I will become a monk.
और अगर राधा रानी नहीं है तो मैं सन्यासी बन जाऊंगा.
In the meantime, in Yavat, Radharani is crying, 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 crying in her room.
और इस बीच राधा रानी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी.
And the gopis, they're very worried. They tell Jatila, "Radharani is crying so much. This is very bad. When a woman cries at home, means all the money will go away."
तो सखियां राधा रानी की जो सासू जी हैं जटिला और नंदी कुटिला उनको बताते हैं कि जब घर की बहू रोती है तो सारा धन नष्ट हो जाता है.
What to do? Maybe when you give donation to a sannyasi or to some holy person, then you will become more happy again.
तो इस अवस्था में जब घर की बहू रो रही है तो तभी आप कोई विरक्त व्यक्ति को अगर दान दे दें तो फिर हमारा संकट बच सकता है.
Then one gopi is arriving. She says, "Oh, I saw one sannyasi. He just arrived in Yavat."
तो सखी आकर खबर देती है कि अभी अभी एक सन्यासी यावट में आ रहा है.
They say, "Radharani, come. We go and give donation to the sannyasi."
तो सब लोग गोपियां सखियां राधा रानी को कहते आप जल्दी जल्दी आ जाओ और हम सन्यासी को दान देंगे.
राधारानी से नो आई एम नॉट गोइंग आउट आई डोंट वांट टू सी एनीबॉडी.
राधा रानी कहते हैं कि हम किसी को मिलने जाते नहीं है और जाना चाहते नहीं है कहीं नहीं जाएंगे.
देन जटिला सेज क्विकली ब्रिंग दैट सन्यासी इनसाइड.
तो जटिला सासू जी बड़े प्रेम से कहते हैं तुरंत इस सन्यासी को पास में लेके आओ.
यू नो इन द लेडीज क्वार्टर नो मैन कैन गो इनसाइड.
क्योंकि जो औरतों का अपना निजी कक्ष होता है वहां पर कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता है.
But Jatila say, "Oh, big problem, Radharani is crying. Bring him inside."
लेकिन समस्या ऐसी है, जजिला कहती है कोई बात नहीं, हमारा नियम कुछ भी होगा, इस समय संकट के समय उस सन्यासी को भी अंतर कक्ष में लेके आओ।
Then the gopi said, Radharani, here's the sannyasi, give some donation.
तो फिर गोपियां कहती है, हे राधारानी, देखो सन्यासी आ गया है, इसको दान दे दो।
And Radharani is giving the hand with donation. She looking in the face of the sannyasi says, I know this face.
जब दान देती है हाथ उठाकर, तो देखती है चेहरे को, कहती है मैं इस चेहरे को जानती हूँ।
But what happened? No hair, no blue color, no yellow dhoti, no flute, but I know this face.
काले रंग की कांति नहीं है, नीले रंग की कांति नहीं है, पीतांबर नहीं है, केश नहीं है और मुरली भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस चेहरे को मैं जानती हूँ।
So she asked, what happened to you?
तो कहती है क्या हुआ आपको?
I cannot live without you, so I've become a beggar of your love.
क्योंकि आपके बिना मैं जी नहीं सकता, इसलिए मैं भिक्षुक सन्यासी बन गया हूँ।
Then all the man is gone. So this is Mansarovar, some spirit. You can imagine many leela like this happening here.
तो ये मान मान लीला मान जो राधा रानी का था वो समाप्त हो गया। तो ये मान सरोवर है, यहाँ पर जैसी अद्भुत लीलाएं होती है, इसका अर्थ और रहस्य कोई नहीं समझ सकता।
मान सरोवर मोस्ट कॉन्फिडेंशियल प्लेस, वेरी डीप फॉर प्रेयर, फॉर मेडिटेशन, फॉर योर यात्री।
तो मान सरोवर एक बहुत ही गुप्त और रहस्यमय स्थान है और हम जैसे यात्रियों के लिए चिंतन मनन और भजन करने के लिए उत्तम स्थली है।
And then from here, you take the mercy of Radha Krishna and Prabhupada and Guru Deva everywhere.
जय, और यहाँ पर जो कृपा आपको प्राप्त होगी राधा कृष्ण की, भगवान की ओर से, वो आप सभी दुनिया में जाकर बांट देना।
जय हो,
जय हो मानसरोवर धाम की, His Holiness परम अद्वैति महाराज की। We had met महाराज about 24 years back. At Vrindakund, Radhana Swami, in his Vrindakund place, which was there before.
Vrindakunja,
in Vrindavan itself.
Next to Gopeshwar Mahadev.
Haribo!
Haribo!
Jai Jai Sri Radhe! Maharaj, thank you very much, very grateful to you. Sab log teen bar Haribol bolenge.
Happy to meet you.
Haribo!
Haribo!
Haribo! Haribo! Thank you, Maharaj.
Haribo.
So much. All the devotees, thank you very much for coming. Hare Krishna. And we have now hospice in Vrindavan at Parikrama Road. We run a hospice. We run a hospital in Bombay also. Bhaktivedanta Hospital.
The hospice is called hospice.
Yeah, that is run by us.
Acha, from... Yes.
From Mumbai.
Radha Gopina.
Yes, yes. And we have also eye hospital in Barsana. For last 20 years we are working there. Now permanent seva is started.
Radhe Radhe.
Radhe Radhe. I will inform Radhanath Maharaj about my visit with you.
Okay.
Thank you so much.
Haribo.
Hare Krishna. Thank you, Maharaj. You took bath in Mansarovar?
Yes.
Jai.
After cleaning, we took bath and now we are coming here after you leave.
Okay, we'll finish fast also.
Yes, go ahead.
तुम जी कितना मिनट आपके पास है? इनको फोन कर दो कि देर हो जाएगी, बोल दो, नहीं तो फिर यहाँ पर अभी निकलना पड़ेगा। हाँ, how much time you allow? I will speak. English half an hour. Okay, Hare Krishna. ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो जैसे महाराज जी ने बताया कि बहुत ही उत्कट स्थान है, बहुत ही तीव्र भावनाओं का यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है और बहुत ही गुप्त स्थान है ये। राधा रानी के प्रेम में, भगवान के प्रति जो प्रेम है उसमें 8 प्रकार के भाव होते हैं, जैसे रति, प्रेम, स्नेह, भाव, उसमें एक मान है। और मान भौतिक दुनिया में समझते हैं हम लोग क्रोध या गुस्से की तरह से, लेकिन मान जो है वो क्रोध या गुस्सा नहीं होता है। मान वो भावना है, रूठने की भावना, जिससे कृष्ण भगवान का राधा रानी के प्रति प्रेम बढ़ता है और राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता है। क्योंकि राधा रानी कृष्ण के प्रेम के लिए और सेवा के अलावा और कोई कृत्य करती नहीं है। उनका हर एक कृत्य जो है वो कृष्ण के आनंद के लिए, उनके प्रेम के लिए, उनके संबंध को अधिक गहरा करने के लिए है। तो ये स्थान उसी प्रकार से, इस स्थान उसी प्रकार से ऐसा उत्कट स्थान है। मैं जानबूझ के ही आपको ऐसे घनघोर वाटिका में लेकर आया हूं, क्योंकि ऐसा अनुभव आपको और कहीं नहीं आएगा। हाँ, ये जो पेड़ हैं ये पीलू के वृक्ष हैं और इनकी विशेषता ये है कि जैसे ही ये बढ़ते हैं तो तुरंत जमीन की ओर बढ़ने लगते हैं। आप देखिए इनकी शाखाएं जो है ऐसे जमीन की ओर ही जाती है, बहुत नम्रता का प्रदर्शन करते करते। और ब्रज में पीलू के वृक्ष जो है ये राधा रानी को बड़ा प्रिय है, इसके वसंत ऋतु में फल भी आते हैं, वो भी राधा रानी को बड़े प्रिय है। एक संगीत में राग भी है, राग पीलू, जो कृष्ण भगवान राधा रानी को चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये राग पीलू है, हरे कृष्णा। तो एनीवेज, तो जैसे महाराज ने बताया कई प्रकार के कारण हैं जिसके वजह से राधा रानी रूठ जाती है। तो यहां पर वो रूठ के आई थी क्योंकि भगवान रास में देर से आए थे। भगवान रास में देर से आए थे तो विरह भी हुआ, रूठ भी गई। तो यहां पर आकर राधा रानी रोई और उनके तप्त दुख भरे, विरह भरे अश्रुओं से ये पूरा मान सरोवर तैयार हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसी उत्कट जगह है, कैसे हमारे समझ के बाहर है। ये राधा रानी के भगवान के प्रति प्रेम और विरह की वजह से निकले हुए अश्रु हैं जो इस सुंदर सरोवर के रूप में आपके लिए प्रकट है। तो समझने की बात यह है कि अश्रु हमारे जीवन में कई बात से निकलते हैं। हमारी मन से बात नहीं हुई तो अश्रु निकलते हैं, कोई दुर्घटना हुई तो अश्रु आते हैं, कोई रिश्ता टूट गया प्रेम का तो अश्रु आते हैं, अपेक्षित फल प्राप्त नहीं हुआ तो अश्रु आते हैं, बहुत दर्द हुआ शरीर का मन का तो अश्रु आते हैं। लेकिन ये अश्रु जो आते हैं ये कई भौतिक कारणों से ये बेकार के अश्रु हैं, क्योंकि ये हमें, इस प्रकार के अश्रु जो हैं वो हमें इस दुनिया में और अधिक बांध देते हैं, और दुनिया से अधिक आसक्ति में डुबो देते हैं। लेकिन जब राधा रानी अश्रु बहाती है तो वो उन्हें कृष्ण भगवान के प्रेम के लिए और उनके पास में ले जाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु सुरभि कुंज में कहते हैं कि मुझे भक्तों के आंखों में हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते हुए एक बूंद कोने में अश्रु का दर्शन करने की इच्छा है। जब मैं एक बार देख ले चखे जल, एक बार अगर नित्यानंद प्रभु किसी भक्त के आंखों में भगवान का नाम का उच्चारण करते हुए एक अश्रु का बिंदु देख लेते हैं तो वो तुरंत कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम का दान उस भक्त को कर देते हैं। तो वो अश्रु कीमती है जो कृष्ण भक्ति देता है, जो कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा देता है, और बाकी सारे अश्रु जो है बेकार है। और हम देखते हैं कि जितने हम अश्रु इस दुनिया में बहाते हैं वो सब व्यर्थ चले जाते हैं, उससे कुछ प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए इस जगह पर बैठकर हम सब लोगों को ये प्रण करना चाहिए कि हम दुनियादारी के किसी वस्तु पर अभी नहीं रोएंगे। वी विल नॉट क्राई अपॉन एनीथिंग, एनी लॉसेस।
एनी पेन्स, यहाँ पर के जो दुख भरी घटनाएं हैं, यहाँ का बिछो है, यहाँ का विरह है, इसमें हम अश्रु नहीं बहाएंगे। अगर अश्रु बहाना ही है तो हम लोग कृष्ण भगवान के लिए अश्रु बहाएंगे कि हमें भक्ति नहीं मिल रही है, सेवा नहीं मिल रही है ना, या जीवन व्यर्थ जा रहा है, राधा कृष्णों के चरणों में अर्पण नहीं हो रहा है, इसके लिए अश्रु बहाएंगे। क्योंकि केवल वो ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जुगल जोड़ी जो अश्रु बहाने के योग्य हैं, जिनके लिए अश्रु बहाने से कोई मतलब है, कोई अर्थ है। इसलिए दुनिया में हमें पता है कि यहाँ के जो रिश्ते होते हैं वो सब ऐसे ही खोखले होते हैं। कितने भी हम लोग उस पर गीत बनाएंगे, हाँ पिक्चर में गाने गाएंगे, कविता बनाएंगे, उसमें दर्द भरी गजलें लिखेंगे, हाँ ये सब बेकार के अश्रु हैं। ये हमें केवल और अधिक गहरी माया में डुबो देते हैं। इसलिए ऐसे कोई दुनिया की रिश्तों के खोने पर, दुनिया के रिश्तों में हादसा होने पर, प्रेम का भंग होने पर, हृदय भंग होने पर हम नहीं रोएंगे। हम केवल तब रोएंगे जब हम श्री कृष्ण बिछड़ जाएंगे, जब नहीं प्राप्त होंगे, नहीं कृपा करेंगे, नहीं सेवा देंगे तो रोएंगे। और जब कोई साधु संत का देहांत होता है तो उनके विरह में हम रोएंगे, क्योंकि उनके विरह में भय हुए एक एक अश्रु हमें भगवान के और अधिक पास लेके जाएंगे। जैसे मदन मोहन जी का अभी शरीर छूट गया कुछ दिन पहले, 17 अक्टूबर को, तो हमने उनका एक भजन था, महल राधिका का बुहारा करेंगे, उन्हें आते जाते निहारा करेंगे, उसको चलाया तो हमारे हॉस्पिटल के बहुत सारे लोग रोने लगे। तो मैंने उसके बाद में उनको कहा कि आपने बहाए हुए हर एक अश्रु जो है, हर एक अश्रु का जो बिंदु है वो आपको और अधिक भगवान के पास लेके जाएगा। ये अश्रु बहुत कीमती है। हाँ, और सखियां जो है वो भी रोती है भगवान के विरह में। एक छोटा सा भजन है, उसका अर्थ ऐसा है कि भगवान मथुरा जा चुके हैं, वहां से आगे भी जा चुके हैं, और गोपियां विरह में हैं, रोज तैयारी कर रही हैं, रोज वो नहीं आ रहे हैं, रोज मालाएं टूट रही हैं, लड्डू भी तोड़ रहे हैं, छाती पीट कर रोया जा रहा है। तो ऐसे में एक सखी रो रही है, तो इतनी उत्कट भावना में रो रही है, तो कृष्ण भगवान उनके हृदय से भाव रूप में प्रकट होकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं भाव में, और पूछते हैं उसे, क्यों रो रही है तुम? अरे आपके व्याध में रो रहे हैं। और कहते हैं कि ये मेरे अश्रु जो बह रहे हैं उसको आप हाथ लगाकर पोंछना नहीं, शायद आपके हाथ जल सकते हैं, हाथ में छाले हो सकते हैं, ऐसे वो कृष्ण को कह रही है। आपके लिए ही आंसू बह रहे हैं, सावरे तेरे लिए ही, सावरे तेरे ही लिए ये बरसते आंसू, रुकने पर नहीं रुकते ये हमारे आंसू। तो ऐसे अश्रु गोपियां बहा रही है, और अश्रु की वजह से कृष्ण भगवान उनको हृदय से भाव रूप में प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं। तो ये कीमती आंसू हैं जो कृष्ण के लिए बहाए जा रहे हैं, कृष्ण की याद में बहाए जा रहे हैं, कृष्ण को प्राप्ति होने पर खुशी से बहाए जा रहे हैं, जब उनका जन्म हुआ तो बहाए जा रहे हैं आनंद आश्रु। ऐसे कहते हैं यशोदा माई की आंखों के आंसू कभी सूखे नहीं, वो हमेशा जब कृष्ण थे तभी भी उनके आंसू से आंखें भरी हुआ करती थी, और जब वो चले गए तो भी वो बहा करते थे हमेशा। ऐसा कोई समय नहीं था जब भी ब्रज की गायें जब कृष्ण थे यहाँ पर तब उनके आंखों में आंसू नहीं थे, हमेशा थनों में दूध टपकता हुआ और आंखों से आश्रु प्रेम के उनके बहा करते थे। जब उद्धव जी भगवान का संदेश लेकर जब ब्रज में आए, नंदगांव गए, पूछा नंदगांव में नंद बाबा कहाँ रहते हैं, तो ब्रजवासी बोले ये दो नदियां यहां से बह रही है ना, इसके किनारे ही चले जाओ तो नंद भवन पहुंच जाएंगे। तो ऐसे किनारे किनारे चले गए, नंद भवन पहुंच गए तो क्या देखा, एक नदी है यशोदा माई के अश्रुओं की और एक है नंद बाबा के अश्रुओं की। जब से कृष्ण गए हैं तब रोना बंद ही नहीं हुआ है, अश्रु रुके नहीं है, तो वो नदी के रूप में बह रहे हैं नंदगांव में। इसका दर्शन उद्धव जी ने किया और वो दंग रह गए कि मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं, भगवान के साथ रहता हूं, सब कुछ संग करता हूं, लेकिन ये तो अद्भुत दृश्य है, यहाँ पर दिन रात अश्रु बहाए जा रहे हैं, नदियां बह रही हैं अश्रु की। तो ये जो अश्रु हैं ये हमें भगवान के पास लेके जाते हैं। और जो ढोंग के अश्रु होते हैं वो हमारे आचार्य कहते हैं कि जो भी अनुभूतियां साक्षात्कार हो गए हैं वो सब उसको धो डालते हैं पूरे, खत्म कर देते हैं। इसलिए नकली अश्रु का कोई काम नहीं है, क्योंकि भगवान को ढोंग पसंद नहीं है। जब कोई ढोंग करता है तो जो भी अनुभूतियां शुद्धि पर प्राप्त हो गया है वो भी नष्ट हो जाता है। लेकिन प्रेम से हमको भगवान के नाम को जप करना चाहिए। भगवान का नाम जो है वो प्रबोधन मतलब संबोधन के लिए है, पुकारने के लिए है, केवल तोते की तरह रटने के लिए नहीं है। वो संबोधनात्मक प्राप्ति है वो जीवन की। इसलिए सब लोग यहां पर प्रण कर लीजिए कि अभी हम इसके आगे रोएंगे तो केवल कृष्ण के लिए रोएंगे, और दुनिया के किसी रिश्ते के लिए, किसी नाते के लिए, किसी लॉस के लिए, किसी कोई चीज खोने पर, कोई समृद्धि संपत्ति प्रॉपर्टी पैसा ये सब खोने पर हम नहीं रोएंगे। हम यहां बैठे हमारी गाड़ी को किसी ने ठोकर मार दिया तो हम नहीं रोएंगे, रोएंगे तो केवल कृष्ण भगवान के लिए रोएंगे। सारे आंसू उनके लिए बचा के रखना, क्योंकि उनके लिए बहाएंगे तो वो आत्म साक्षात्कार देंगे, प्रेम भक्ति देंगे और भगवान के लिए और सानिध्य देंगे। इतनी ही उत्कट जगह है यहाँ पर। प्रेम भक्ति शुद्ध भक्ति सब प्रकार का शुद्धिकरण का रहस्य यहाँ पर छुपा हुआ है। ये बहुत उत्कट भूमि है, यहाँ पर हमारी आने की योग्यता नहीं है, फिर प्रभुपाद जी की अनंत कृपा से हम लोग यहाँ आ सकते हैं। इस जगह पे और भी एक लीला हुई थी कि जब रास भगवान ने रचाया था बंसीवट के पास वृंदावन में, तो सभी देवतागण आकाश में इकट्ठा हो गए अपने अपने ताल सुर और नृत्य के साथ, ध्वनि के साथ, वाद्यों के साथ में इकट्ठा होकर नाचने लगे, उस सुर को मिलाने का प्रयास करने लगे, उस ताल को पकड़ने का प्रयास करने लगे, लेकिन किसी को भी वो ताल वो पकड़ में नहीं आया। गंधर्व लोग जो संगीतज्ञ होते हैं बड़े जन्म से ही, वो कोई भी ये ताल को समझ नहीं पाए। अरे जब वो कालिया के ऊपर नाच रहे थे थनों के ऊपर उसके, तभी भी सब पकड़ नहीं पाए उस ताल को। हमेशा खाली ऐसे कोशिश करते रहे और फिर अपना ही बजाते रहे और खुद नाचते रहे। तो ऐसे भगवान का अद्भुत संगीत है जो कोई गंधर्व यक्ष किन्नर किम पुरुष उसकी तुलना नहीं कर सकता है। तो ऐसे जब ही रास नृत्य का आरंभ हो ही रहा था तो शिवजी महाराज भाग 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 के आए रास में प्रवेश करने के लिए, अपने इष्ट भगवान की सेवा करने के लिए। तो ललिता देवी ने उनको रोक लिया, निकुंज के गेट पर खड़ी थी वो, रोक लिया। यहां पर केवल एक ही पुरुष है, वो है श्री कृष्ण, बाकी सब कन्याएं हैं। तो वो कहते हैं कि हमें कैसे प्रवेश मिलेगा, हम तो पुरुष हैं, आपको भी स्त्री बनना पड़ेगा, सखी बनना पड़ेगा, चुनरी ओढ़ना पड़ेगा। चुनरी तो ओढ़ लूंगा मैं, लेकिन शरीर तो मेरा पुरुष का है, तो कैसे मैं स्त्री बनूंगा, कैसे मैं कन्या बनूंगा। तो कहते हैं आपको मान सरोवर में आके स्नान करना होगा, आप जाइए जमुना पार जाके मान सरोवर में स्नान कीजिए। और वो स्नान करते समय राधा रानी और कृष्ण भगवान की करुणा की याचना कीजिए, वो भाव के लिए प्रार्थना कीजिए। जब वो भाव से आप प्रार्थना करेंगे तब जाकर आपको गोपी शरीर प्राप्त हो जाएगा। अभी हमको अगर कोई कहे कि आपको यहां स्नान करने से लेडी का शरीर मिलेगा तो हम लोग 101 बार सोचेंगे स्नान करो कि नहीं करो, क्योंकि अपने पुरुष शरीर पे हमको अहंकार है, अपने को पुरुष समझते, उसकी मानसिकता को हम लेके चल रहे इतने साल तक। अरे भगवान के रास्ते में प्रवेश मिलेगा फिर भी सोचेंगे 101 बार, क्योंकि अपने शरीर से और अपने शरीर की मानसिकता से इतना लगाव है हमको कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम वो हैं, ये हैं, हम डॉक्टर हैं, हम फलाना है, अमीर है, सुंदर है, ऐसा है, बलवान है, जो भी कुछ हमारे मन में अपने बारे में अहंकार होता है उसको त्याग नहीं सकते हम लोग। लेकिन शिवजी महाराज कितने महान है, देखो आप, महादेव है वो, ब्रह्मा जी के पुत्र होने पर भी ब्रह्मा उनकी पूजा करते हैं, ऐसे महादेव है वो, पूरे विश्व में ख्याति, पार्वती उनकी पत्नी है। लेकिन जब ललिता देवी ने कहा कि आपको मान सरोवर में जाके स्नान करना है तो एक क्षण भी, एक लव मात्र भी उनके मन में विचार नहीं आया कि मेरी पार्वती क्या कहेगी, उसके बारे में सोचा ही नहीं उन्होंने। तो मैंने परसों भी एक बात पर चर्चा की थी, लवल्यम, इगरनेस के बारे में। ये जो इगरनेस है, लवल्यम जो है, आतुरता, ये भक्ति की कीमत है, मूल्य है भक्ति का। उसके कारण ही रूप गोस्वामी कहते हैं कि इस मूल्य को अदा करने से ही प्रेम और भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो उन्होंने एक भी लव मात्र समय के लिए सोचा नहीं कि कैसे होगा, सीधे भाग के आए यहां पर, वो छलांग लगाई, प्रार्थना करके गोपी शरीर प्राप्त किया और वैसे ही दौड़ के जमुना पार करके फिर रास मंडल के दरवाजे पर पहुंच गए। उनको देखकर सभी गोपियां ठहाका मार के हंसने लगी, बताइए क्यों? क्योंकि वरदान तो केवल गोपी भगवान का वरदान, गोपियों का वरदान जो था वो शिवजी के लिए था, वो सांपों के लिए नहीं था। सांप तो ऐसे रह गए, आप सोच सकते हैं कि सुंदर युवती है, उसके सर पे सांप, आंख में सांप, गले में सांप, तो पता भी नहीं उनको, भान ही नहीं उनको कि सांप है नहीं है, वो इतने भाव में विभोर थे, कोई पता ही नहीं उनको क्या हो रहा है। वैसे ही भाग के आए तो सब चकिया सुंदर युवती को देखकर, उनके शरीर पे नाक देखकर हंसने लगी, फिर भी उनको परवाह नहीं है कौन हंस रहा है कौन क्या कर रहा है। उनका तो एकमात्र एक निष्ठ विचार है उनका, ठाकुर जी की सेवा करनी है किसी भी कीमत पर। तो उनका ये भाव देखकर ललिता विशाखा बड़ी प्रसन्न हो गई और उसके उस गोपी शरीर के शिव जी का उन्होंने श्रृंगार किया अपने हाथों से, उनको सजाया, उनको अलंकृत किया फूल मालाओं से और गहनों से, चुनरी उड़ाई और हाथ हाथ कलाई पकड़ के सीधे बीच में रास मंडल में ले गई उनको, और फिर उनके हाथ में चमर दिया और राधा और कृष्ण जो बीच में रत्न सिंहासन पर विराजमान थे, उनकी चामर सेवा शिवजी महाराज ने गोपी रूप में की, वही गोपेश्वर महादेव के रूप में प्रसिद्ध हुए। फिर बहुत देर तक रास मंडल में चामर सेवा करने के बाद में बड़े प्रेम से फिर ललिता देवी ने उनको फिर हाथ लेकर रास मंडल के गेट पर लाया और कहा आप यही रहो और यही रहकर रास मंडल की रक्षा करो। तो तब से शिवजी महाराज वहां पर गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है बंसीवट के पास, वो बंसीवट की रक्षा करते हैं, बंसीवट के पवित्र को, बंसीवट की पवित्रता को बनाए रखते हैं और हर रोज शाम को उनको वहां पर उस शिवलिंग को गोपी का स्वरूप देकर श्रृंगार करके सजाते हैं और सब लोग उनकी पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? उस भाव की, जो आतुरता की, जिस आतुरता से बिना कुछ सोचे हुए उन्होंने अपने शरीर को परिवर्तित कर दिया, वो प्रमाण है उनका कि शिवजी महाराज की भक्ति कितनी श्रेष्ठ है। हम सबको गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करना चाहिए कि ऐसी आतुरता, ऐसी बेपरवाही, मतलब कैसी बेपरवाही, क्या होगा हमारा, लापरवाही दुनिया की कर्तव्य में नहीं, लापरवाही बेपरवाही किसमें है, क्या होगा भगवान की सेवा में हमारा, लोग हंसेंगे कन्या को देखकर हंसेंगे, और इनके खिलाफ कौन है, कंस है। कंस की कहानी ऐसी है कि कंस जैसे ही बरसाने में आया तो वो स्त्री बन गया, आपको शायद पता नहीं होगा कहानी, पता है तो बता देता हूं। तो वो गोकुल से चले गए सब लोग कंस के रोज के आतंक की वजह से, तो सेकेंड डे जब राक्षस आया तो कोई मिला नहीं उनको, वापस लौट गया, भाई कोई है ही नहीं गोकुल में, किसको मारे हम। तो फिर उन्होंने अपने प्रधान सेनापति को भेजा, जाओ देख के आओ, तो वो गया ढूंढते 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 नंदगांव तक पहुंच गया और उसने कृष्ण बलराम को खेलते हुए देखा, अरे तो यहाँ खेल रहे हैं, शिफ्ट हो गए, ये ट्रांसफर हो गए। तो पकड़ने का कोशिश किया तो दो पत्थर बन गए सब लोग, उन्हीं पत्थरों का फिर हाउ बिलाव के रूप में राजा यशोदा माई ने कृष्ण भगवान को डराने के लिए उनका उपयोग किया, बहुत विशाल थे वो भी लौट के नहीं आए। हालांकि सत्य यह है जो भी गया वो लौट के नहीं आया, उसका वन वे टिकट था, उसको खाली मथुरा से गोकुल, मथुरा से नंदगांव, मतलब मथुरा से गोकुल तक ही टिकट दिया था, नो रिटर्न टिकट, कोई लौट के आए नहीं, सीधे वहां से वन वे टिकट टू यमराज। तो ये कंस बड़े परेशान हो गए, अब मैं खुद जाके देखता हूँ क्या हो रहा है क्या। तो जैसे ही ढूंढे ढूंढे बरसाने की सीमा में आया, तुरंत स्त्री बन गया वो, कंसनी गोपी बन गया, इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया, रोने लगा। गोपियां ताली पीट कर हंसने लगी, बोले माफ करो, बचाओ उसे, क्या करें अभी, इसका करें क्या, अभी क्या हो गया ट्रांसफॉर्मेशन उसका करें क्या। रोते बोले कुछ नहीं करना है, अभी खाली कंडे लेपना है, हाँ गोबर इकट्ठा करना है, ब्रजरज में मिक्स करके उसका कंडे बनाना है, सुखाना है, उसको ड्राई होने के बाद में इकट्ठा करना है, डालना है टोकरी के अंदर और उसको जमा करना है, ये आपका काम है आज से बस, और समय बच गया तो फिर गौशाला को साफ भी करना है। 6 महीने तक गोपियों ने उनके हाथ से कंडे लिपवाए और 6 महीने तक रोते रहे रोते रहे रोते रहे, क्या होगा हमारा, कैसे मैं मुक्त हो जाऊंगा इससे। जिसको अनायास ही इतना पापी होने पर भी गोपी का शरीर प्राप्त हुआ ब्रज गोपियों के बीच में और गोबर की सेवा मिली, इसके लिए भक्त लोग तरसते हैं और उनको प्राप्त होने के बाद भी वो रो रहा है, और यहाँ पर महादेव जी भाग के जाके स्नान करके स्त्री बनने को उत्सुक हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, बाहरी रूप कुछ भी हो, अंतर में भावना क्या है वो इम्पोर्टेंट है। कंस को तो जीवन की परिपूर्णता परम सिद्धि प्राप्त हो गई थी वहां पर पहुंचने पर, अगर उसकी मति सही होती तो कहता थैंक यू वेरी मच, अभी कोई आतंक करने की जरूरत नहीं, यहां रहो अच्छी तरह से, सभी लोग गोपी बनना चाहते हैं, वो मत्स्य जब अवतार हुआ था तो समुद्र कन्याएं संग करना चाहती थी, तो वराह अवतार लिया, मत्स्य अवतार लिया, कुर्म अवतार लिया, वामन अवतार, हर एक समय पर अन्य स्त्रियां उनके ऊपर आकर्षित हो गई थी। रामचंद्र जी अभी जंगल में जा रहे थे तो दंडकारण्य में ऋषि आकर्षित हो गए थे, अयोध्या में गए तो अयोध्या वासिनी आकर्षित हो गई थी, मिथिला में गए शादी करने के लिए मिथिला वासिनी भी आकर्षित हो गई थी, मथुरा में गए तो मथुरावासी कन्याएं आकर्षित हो गई थी। सब लोग गोपी बनने के लिए आतुर थे और ये बेचारा अपने आप गया और गोपी अपने आप बन गया, फिर भी दुखी है। इसका मतलब क्या है? मति सही जगह पर नहीं है। प्राप्ति तो हो रही है लेकिन मति सही जगह पर नहीं है, इसलिए प्राप्ति होने पर भी उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो अल्टीमेटली क्या समझना है अपने को? समझना यह है कि भाव सही होना चाहिए। बाहरी दृष्टि से हम लोग टेम्पल कमांडर होंगे, टेम्पल प्रेसिडेंट होंगे, किसी मूवमेंट के अध्यक्ष होंगे, सन्यासी होंगे, ब्रह्मचारी होंगे, गृहस्थ होंगे, बहुत साल बीत गए होंगे भक्ति में, ऐसे बहुत सारी भौतिक बाहरी उपाधियां हमारे अंदर होगी, लेकिन अगर चेतना और मति सही नहीं है तो सब बेकार है। और इनमें से कोई बड़ी बड़ी प्राप्तियां नहीं है लेकिन अगर मति सही जगह पर है, जैसे कोलवेचर श्रीधर क्या था उसके पास, एकदम फटीचर नंबर वन, धोती में धोती कम छेद ज्यादा, झोपड़ी में छत कम छेद ज्यादा, हाँ आधा पैसा गंगा जी की सेवा में, टूटा फूटा मार खाया हुआ लोटा, लेकिन महाप्रभु चैतन्य ने उसको महाप्रकाश में बुलाया। किसी को पता नहीं था श्रीधर कौन है, बोलते इतना दिन हो गया साथ में कभी ऐसा नाम नहीं लिया, आज बोल रहे श्रीधर को बुला के लेके आओ। तो उन्होंने पूछा कहाँ है श्रीधर, तो कहते हैं कि सीमांत द्वीप चले जाओ, वहां पर जब आपको हरे कृष्ण मंत्र की रोते रोते आवाज आएगी वही झोपड़ी में वो रहता है, वो उसी की आवाज होगी। तो आवाज को ढूंढते ढूंढते गए वो और बोला कि आप श्रीधर हो, बोला हाँ, तो महाप्रभु जी बुला रहे हैं महाप्रकाश में आपको। अच्छा मुझे बुला रहे, मुझे, बेहोश होकर गिर गया, यकीन नहीं आया उसको कि मेरी क्या योग्यता है। तो उसको बेहोश अवस्था में उठा के लेके गए उधर और वहां पर महाप्रभु जी ने बोला श्रीधर उठो श्रीधर, तो उठ गया, फिर देखा महाप्रकाश भाव में चैतन्य महाप्रभु को, फिर बेहोश हो गया। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि मैं कौन हूं, मेरी क्या योग्यता है। लेकिन भगवान ने कहा था एक दिन तुम्हारा जो ऐश्वर्य है सभी दुनिया के सामने प्रकट करूंगा मैं, महाप्रकाश की लीला में सबके सामने उन्होंने प्रकट किया कि तुम्हारा धन जो है कितना कीमती धन है, तुम्हारे पास अमूल्य धन है, वो सब भक्तों के सामने, अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर पंचतत्व सबके सामने भगवान ने सो कॉल्ड तथा कथित फटीचर भक्त का जो ऐश्वर्य था वो प्रकट किया। इसलिए बाहरी चीजों पर मत जाना, हृदय में भाव क्या है उसके ऊपर ध्यान देना। ब्रज में भी आप ब्रज में बैठे हो कि आश्रम में सो रहे हो कि हलवा खा रहे हो कि रोटी सूखी खा रहे हो, ये सब भारी चीजें हैं। यहाँ की प्राप्ति जो है वो भाव है और ये भाव की प्राप्ति अगर हमने नहीं की, भक्तों का अपराध किया, भक्तों को दुख दिया, तो सारी यात्रा व्यर्थ है। और नम्रता से आप रहे, सब भक्तों को सामने किया, भक्तों को सेवा किया, भक्तों को प्रसन्न किया, फिर नम्रता से स्थानों का दर्शन किया, श्रवण किया, सेवा करने का प्रयास किया, तब अत्युच्च प्राप्ति आपको यहां पर हो जाएगी। यही महादेव गोपेश्वर की कथा का सार है और ऐसी अद्भुत जगह है ये। हम लोग 50 बार डूबेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमको, क्योंकि हमारी मति सही नहीं है। शिव जी एक बार छलांग लगाया तो वो गोपी बन गए, आज भी बैठे हुए वहां पर गोपेश्वर महादेव के रूप में। तो ये जो सारी गोपियों का कल महाराज ने बताया, सुबुद्धि राय का, फिर सामानंद पंडित का, मदन मोहन जी ब्रजवासी का और सभी सखाओं का भाव जब हम ग्रहण कर सकेंगे एक कण मात्र जो है, तो हमारी यात्रा भी सफल है, हमारा जीवन भी सफल है और सब कुछ धन्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए इन लता पताओं को, बेलियों को, सबको विनती करो, इनको गले लगाओ, ये कल्प वृक्ष है, ये अद्भुत, ये तो या तो ये राधा रानी का स्वरूप है स्वयं, या तो ये संत महात्मा है, या तो ये कल्प वृक्ष है, तीनों दृष्टि से ये महान है। और आपके मन में जो भक्ति के विषय में कामना होगी, इच्छा होगी, ये सब पूरी करने का सामर्थ्य रखते हैं। आप इनको गले लगाओ, प्रेम से अपने हृदय की बात उनको बताओ और प्रार्थना करो कि हमें राधा कृष्ण के चरणों में थोड़ी सी रति, थोड़ा सा प्रेम, थोड़ी सेवा प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन धन्य है। और पुकारो, पुकारने में कंजूसी मत करो, क्योंकि यहां पर जो है भगवान नित्य नियम से रोज के स्तर पर हरेक क्षण यहां पर नित्य लीला करते रहते हैं। यही है वो हमारे कुमति और दूषित मति की वजह से हमको दर्शन नहीं मिल रहा है उनका, लेकिन वो यही है और हमारी बातों को सुन रहे हैं, हमारी पुकार को सुन रहे हैं, हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। इसलिए पुकारने में कंजूसी मत करो, हाँ सब कुछ भूल जाओ और उनको पुकारो। सभी गोपियां पुकारती थी, महादेव जी पुकारते थे, ब्रह्मा जी पुकारते थे, सभी देवता गंधर्व यक्ष किन्नर किम पुरुष सब आकर यहाँ पुकारते हैं। आप भी पुकारो और पुकारते पुकारते आंसू आए तो आप धन्य हो, और नहीं भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ क्योंकि एक और एक अटैचमेंट होता है, अरे आंसू निकलना निकलते नहीं है, 10 साल से पुकार रही हूँ। हमारा वो गोल लाइफ का नहीं है कि आंसू निकलना चाहिए, वो स्वयं स्फूर्त है। यहाँ के गोपी गोपियां और जो भगवान के सेवक हैं वो इन अश्रुओं के आने से परेशान हो जाते हैं। जैसे एक बार कथा आती है कि दारुक है ना, दारुक जो भगवान का सारथी था, वो भगवान का चामर सेवा कर रहा था, तो चामर सेवा करते हुए उसके आंखों में आंसू आने लगे प्रेम से, तो उसको बड़ा कष्ट हुआ कि अरे आंखों आंसू आ रहे हैं तो मेरा दर्शन भगवान का कहां, चामर घुमा रहा हूं नजर नहीं आ रहा है, दर्शन धुंधला हो रहा है, क्यों आ रहे हैं आंसू, आंसू से परेशान हो गया वो दारुक। तो हमें भी ये जो भक्ति के जो ऐसे परिणाम है इस पर भी आसक्त नहीं होना चाहिए कि मुझे रोना है मुझे रोना है, अरे भगवान सब जानते हृदय के अंदर भाव क्या है, तो कोई नाटक ढोंगबाजी नहीं करनी चाहिए। जो भी है प्रामाणिक रह के, ऑनेस्ट रह के, सिंपल हार्टेड साधिक का हृदय बना के हमको चलना है, जो भी है वो है, नो अदर एक्सटर्नल शो, दैट शुड बी अवर कॉन्शियसनेस। कोई बाहर का दिखावा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान के पास में बहुत डीप एक्सरे विजन है, वो आपके हृदय में क्या है सब जानते हैं, उनको हम ढोंग नहीं कर सकते उनके सामने, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सब जानते हैं हमारे हृदय में क्या चल रहा है। इसलिए प्रामाणिकता होना, वो महाराज जी ने एक बार कहा था कि ब्रजवासी भगवान को इतने प्रिय क्यों हैं, क्योंकि ब्रजवासी जो है वो सिंपल हार्टेड है, उनके अंदर और बाहर जो है वो ट्रांसपेरेंट है, कुछ उनके डिप्लोमेसी नहीं है उनके अंदर, कोई मिलावट नहीं है, कोई ढोंग नहीं है। इसलिए वो गरीब होंगे, कुरूप भी होंगे, पढ़े लिखे भी नहीं होंगे, हाँ कुछ भी नहीं होगा जो हम जिस पर हम लोग इतराते हैं, गर्व करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान को वो प्रिय रहते हैं, क्योंकि इनकी जो मति है, जो चेतना है, वो बहुत शुद्ध होती है। इसलिए आप लोगों को, हम लोगों को सबको यहाँ पर प्रार्थना करना चाहिए कि वो जो मति है जो भगवान को भाती है वो हमको मिले। वैसे बाद में अगर वो नहीं है तो मति का मतलब ही क्या है, मति का प्रयोजन ही क्या है, अगर वो मति भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकती है तो मति का होने का मतलब ही क्या है। उस मति के लिए प्रार्थना करो जिसके वजह से हम भगवान को प्रसन्न कर सके। राधा रानी रूठती भी है तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनका प्रेम बढ़ाने के लिए रूठती है, उनका हर कार्य भगवान के प्रसन्नता के लिए। उसी तरह से हमको भी हर कार्य उनके प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान क्या बोलते हैं, तू तेरे काम में तो मैं मेरे धाम में, तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में। अगर उनके लिए हम जीवन अर्पण करेंगे, हमारा सर्व इष्ट वो करेंगे, अगर तू वो करेगा जो तू चाहता है तो होगा वही जो मैं चाहता हूं, अगर तू वो करेगा जो मैं चाहता हूं तो होगा वही जो तू चाहता है। यही एक्चुअली सिंपल सार है, एक्चुअली यू जस्ट वर्क फॉर कृष्णा एंड लीव इट टू कृष्णा। केवल कृष्ण के लिए जीवन समर्पित कीजिए, आगे क्या होना है आपके लिए अच्छा बुरा वो कृष्ण संभाल लेंगे उसको। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, और आगे क्या, तेषाम सतत युक्ता नाम तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्य हम। आपका योग और क्षेम दोनों मैं संभाल लूंगा, आप चिंता मत करो, आपका काम वाली एक ही है, अनन्य चिंतयन्तो माम, किसी और का ध्यान मत करो, मेरे शरण में आओ, मेरा ही ध्यान करो, अनन्य ध्यान करो, सारा आपका जो अच्छा बुरा है सब मैं संभाल लूंगा, जो आपके पास है उसको बचा लूंगा, जो आपके पास नहीं है उसको पूरा कर दूंगा, आपको मेरे पास आने में क्या क्या कमी है वो पूरी कर दूंगा, और जो आपके पास पहले से है उसको बचा के रखूंगा। इतना वादा भगवान करते हैं, और क्या चाहिए आपको। ऊपर से ब्रह्मा भी कहते हैं कर्माणि निर्दहति भक्ति किंतु जब भक्ति भाजम, भक्ति में आने के बाद सब कुछ जो जरूरी नहीं है सब नष्ट भी हो जाता है, तो सब कुछ इंतजाम बना के रखा है, आपको क्या करना है, खाली सरेंडर टू कृष्णा विल, उनकी इच्छा को स्वीकार करो और धन्यवाद करो और जीवन में चलते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी और एक कथा है यहाँ की, कि ये जो राधा रानी, इस स्थान को ब्रजवासी लोग राधा रानी बोलते हैं, हम लोग मानसरोवर बोलते हैं, लेकिन ब्रजवासी लोग राधा रानी बोलते हैं। का कारण यह है कि राधा रानी यहाँ पर आके रोई थी, एक कारण है। और ये जगह की एक कहानी ऐसी है कि जब भगवान के बंसी के अवतार हित हरिवंश गोस्वामी ब्रज में आए तो उन्होंने नरवाहन डाकू का परिवर्तन कर दिया। नरवाहन बहुत भयंकर डाकू था, उसका हृदय परिवर्तन करके उसको भक्त बनाया। तो बड़े प्रेम से नरवाहन ने फिर हित हरिवंश से दीक्षा लिया, शिष्य बना उनका। बड़ा खूंखार डाकू था वो, उसके बाद बहुत बल था, शक्ति थी, शस्त्र अस्त्र भी थे। तो एक दिन उनके शरण में वहीं पर ज्वाइन कर लिया फुल टाइम उसने। वो कहां है मालूम है स्थान? परिक्रमा रास्ते पर जो है हमारे हॉस्पिस के थोड़ा सा आगे मदन टेर नाम का स्थान है, वहीं पर उसका हृदय परिवर्तन हुआ था। तो वहां खड़े रहकर नरवाहन डाकू ने एक बार गुरु से कहा कि मैं आपको कुछ दान देना चाहता हूं, मेरे पास बहुत भूमि है, मैं सब ने वो आतंक से मैंने हड़प कर ली है, सब वृंदावन मेरा है। तो आज मैं वो वृंदावन जो है बाण मारकर जहां तक बाण जाएगा सब भूमि आपको दान करना चाहता हूं। तो उसने वहां पर खड़े रहकर बाण मारा, वो जमुना जी के पार होकर यहां तक आया, वो सब भूमि उन्होंने उसने हित हरिवंश गोस्वामी महाराज को दान में दे दी। इसलिए ये मंदिर जो है ये आज भी राधा वल्लभ जी गोसाई के सेवा के अंडर आता है, क्योंकि तब से वो भूमि जो है जो नरवाहन ने दान की थी हित हरिवंश गोस्वामी राधा वल्लभ जी के गोस्वामी है उनके प्रॉपर्टी में आता है। तो इसलिए राधा रानी की जो सेवा है वो आज भी राधा वल्लभ गोस्वामी जो है, राधा वल्लभ हमारे गुरु जी के मित्र हैं, वो राधेश लाल जी महाराज उनकी गोस्वामी के परिवार के अंडर है, और मदन टेर भी उन्हीं के अंडर है जहां पर हित हरिवंश गोस्वामी ने राधा वल्लभ जी का पेड़ के ढोली में वट के ढोली में सेवा किया था। जय जय श्री राधे श्याम।